नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। झारखंड की मुख्य सचिव ने नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में दलहन पर प्रदेश की सहभागिता का विशेष रूप से किया उल्लेख। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में धान खरीदारी का किया शुभारंभ। कहा, अधिक से अधिक किसानों को कृषि उत्पाद मिलने की कोशिश में लगी हुई है राज्य सरकार। राज्य के उद्योग और श्रम मंत्री संजय यादव ने कहा, राज्य में उद्योगों को दिया जाएगा बढ़ावा, स्थानीय श्रमिकों का विकास उनकी पहली प्राथमिकता। आतंकवाद निरोधी दस्ता और राज्य पुलिस की कार्रवाई में रांची, गिरिडीह और लोहरदगा जिले से 10 अपराधी गिरफ्तार। हथियार, गोलियां समेत कई मोबाइल फोन बरामद। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और पलामू समेत राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर चलने की जताई संभावना, येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में दलहन पर प्रदेश की सहभागिता का विशेष रूप से उल्लेख किया। झारखंड सरकार की तरफ से इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने प्रदेश के विकास के लिए कई बिंदु रेखांकित किए। नीति आयोग द्वारा आयोजित यह सम्मेलन बीते शुक्रवार को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन की आज दूसरे दिन भी अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को अधिक मजबूत करना और तेजी से वृद्धि तथा विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। आप अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के जरिए भी साझा कर सकते हैं। इस कड़ी के लिए सुझाव इस महीने की 27 तारीख तक भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों से हथियार डालने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में आज श्री शाह ने कहा कि नक्सलियों को राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार संकल्पित है। खाद्य वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य भर में 60 लाख क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को कृषि उत्पाद मिले, इसका राज्य सरकार पूरा ख्याल रख रही है। मंत्री आज जामताड़ा में धान अधिप्राप्ति योजना के शुभारंभ के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के 2,33,258 किसानों को इस योजना के तहत निबंधित किया गया है।
इस बार किसानों का प्रति क्विंटल जो है 2300 रुपया हम दे रहे हैं इस बार, और 100 रुपया बोनस। और आज मैं नया मंत्री जब जाने को मिला है तो मैं घोषणा कर रहा हूँ कि 2300 रुपया 100 रुपया नहीं बल्कि 200 रुपया हम बोनस देने जा रहे हैं। 200 रुपया आपको बोनस मिलेगा हमारे किसानों को, एवं किसान को हम मजबूत करेंगे।
राज्य के उद्योग, कौशल विकास और श्रम मंत्री संजय यादव ने कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार ने विधानसभा चुनाव के वक्त जितने वायदे किए थे उन सब को पूरा किया जाएगा। श्री यादव ने आज देवघर में कहा कि विभाग के पदाधिकारी और कर्मियों को ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे स्थानीय श्रमिकों का विकास हो सकेगा। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM आज अपना 16वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। इस मौके पर संस्थान के स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. मिनेश श्री शाह मुख्य रूप से मौजूद रहे। समारोह में एमबीए के सफल विद्यार्थियों के बीच मेरिट सर्टिफिकेट का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर दीपक श्रीवास्तव ने संस्थान की प्राथमिकता के बारे में बताया।
लोग अपने जो महत्वपूर्ण भूमिका देश में व प्रदेश में निभा सकें इसको लेकर कार्य योजना बनाई जाए, उसमें एक हम लोगों ने प्राथमिकता तय की है सोशल इम्पैक्ट, और सोशल इम्पैक्ट के अंतर्गत सीधे जो छोटा सा हम लोग विचार लेके एक थॉट ले हम लोग आगे बढ़े और सोशल इम्पैक्ट को हम लोगों ने डिफेंस सेक्टर MMIM और अदर स्कूल
नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज खेले गए टीबी मुक्त भारत जागरूकता क्रिकेट मैच में लोकसभा स्पीकर 11 ने राज्यसभा चेयरमैन 11 को हरा दिया। इस मैच का उद्देश्य तपेदिक के प्रति जागरूकता बढ़ाना और तपेदिक मुक्त भारत को सहयोग प्रदान करना था। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
इस संकल्प के साथ कि 2025 तक हमें टीबी मुक्त भारत बनाना है, इस खेल कराने का मकसद यही है कि जिस तरीके से खेल में प्रतिस्पर्धा होती है अपने अपने खेल के तो जीतने की, उसी तरीके की प्रतिस्पर्धा है अपने अपने संसदीय क्षेत्र को टीबी मुक्त रखने का, और ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है।
इधर इस मैच में गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने 3 विकेट लिए और अच्छे क्षेत्र रक्षण के लिए उन्हें श्रेष्ठ फील्डर का भी अवार्ड प्रदान किया गया। राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ता ATS ने आज व्यवसायियों और कोयला कारोबारियों को धमकी देने के मामले में विभिन्न गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं लोहरदगा जिले से पुलिस ने विभिन्न लूटकांडों में शामिल 3 अपराधियों और गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने आज बताया कि ये सभी अपराधी आम लोगों को बैंक अधिकारी बनकर फोन किया करते थे। पुलिस अधीक्षक ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपनी निजी जानकारी किसी को भी न बताएं।
सभी आमजनों से अपील है कि साइबर अपराध के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है, और कोई भी इस तरह का अननोन कॉल आपको करता है जिसकी पुष्टि नहीं होती है, कृपया करके अपने निजी खाता या कोई भी चीजों को साझा ना करें, ना ही आधार कार्ड और अपने बैंक खाता का डिटेल्स या इत्यादि शेयर ना करें, ताकि साइबर अपराध से बचा जा सके।
लोहरदगा स्थित मंडल कारा में आज जेल अदालत सह जागरूकता शिविर के साथ साथ मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। विधिक जागरूकता शिविर के बाद जेल में कुल 19 बंदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। डालसा के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि जेल के अंदर वैसे बंदियों का विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है जो 70 साल से अधिक आयु के हैं। इधर साहेबगंज स्थित मंडल कारा में भी आज जेल अदालत सह बंदी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बोकारो समेत धनबाद, रामगढ़, गढ़वा, पलामू, चतरा और गुमला में भीषण ठंड पड़ सकती है। इन सभी जिलों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान चाईबासा का 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान गढ़वा जिले का 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बढ़ते ठंड को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
तो अभी इसको देखते हुए लोगों से है कि आप सुबह कोहरे में जो घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा देख के सतर्कता के साथ आप निकलें, और जो भी परिचालन है उसके बारे में पूरी जानकारी लें, फिर आप अपना कामकाज करें। तो किसान भाइयों से हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने अपने जो खरीफ की खेती है उसको संरक्षित किया होगा। अभी आने वाले दिनों में तो कोहरा आपने को मिलेगा।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड के मुख्य सचिव ने नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में दलहन पर प्रदेश की सहभागिता का विशेष रूप से किया उल्लेख। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में धान खरीदारी का किया शुभारंभ। कहा, अधिक से अधिक किसानों को कृषि उत्पाद मिलने की कोशिश में लगी हुई है राज्य सरकार। राज्य के उद्योग और श्रम मंत्री संजय यादव ने कहा, राज्य में उद्योगों को दिया जाएगा बढ़ावा, स्थानीय श्रमिकों का विकास उनकी पहली प्राथमिकता। आतंकवाद निरोधी दस्ता और राज्य पुलिस की कार्रवाई में रांची, गिरिडीह और लोहरदगा जिले से 10 अपराधी गिरफ्तार। हथियार, गोलियां समेत कई मोबाइल फोन बरामद। और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और पलामू समेत राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर चलने की जताई संभावना, येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ। नमस्कार।